अनन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है इस अध्याय 6 ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता छठवें अध्याय में आप सबका स्वागत है। और ये अध्याय कर्मयोग सेक्शन में, कर्मयोग के बाद ध्यान योग है। और इस अध्याय के जस्ट बाद भक्ति योग प्रारंभ होता है। तो इस अध्याय में टोटल 47 श्लोक हैं, 47। और हम जस्ट इस अध्याय का एक ओवरव्यू, एक आउटलुक हम जस्ट 2-5 मिनट में देखेंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नोट्स बनाना बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवद गीता एक टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है। कई बार हम उसको, क्योंकि स्टोरी जिसके अंदर नहीं है, फिलॉसफी है, तो समझने के लिए ज़्यादा ध्यान से सुनना होता है। तो बुक को पास में रख सकते हैं और नोटबुक भी रख सकते हैं, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकें। इस अध्याय में टोटल 6 सेक्शन हैं, 6 भागों में इस अध्याय को डिवाइड किया गया है। एक तो पहले श्लोक से लेके 9वें श्लोक तक एक सेक्शन है, जिस सेक्शन में भगवान पिछले अध्याय में उन्होंने जो 27 और 28 श्लोक में जो ध्यान योग को बताया था, उसी का डिटेल भगवान बता रहे हैं। और स्पेसिफिक भगवान बता रहे हैं कि योग की 2 स्थिति हैं, एक प्रारंभिक अवस्था, एक अंतिम अवस्था। तो दोनों अवस्थाओं में क्या क्या वस्तुएं होती हैं, क्या क्या, किस प्रकार से ये दोनों अवस्थाएं डिफाइन की जाती हैं, योग की प्रारंभ अवस्था और योग में एडवांस्ड अवस्था, ये 2 वस्तुएं भगवान बता रहे हैं पहले से 9वें अध्याय तक। और अष्टांग योग के भगवान डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, परंतु बता रहे हैं कि अष्टांग योग में भी प्रारंभ में कर्म करने की आवश्यकता होती है, कर्म योग की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति उच्च अवस्था में पहुँच के ध्यान करने में सफल होता है, तब वो क्योंकि ध्यान की अवस्था में उसके मेंटल एक्टिविटी जो है, मन जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता है, मन नियंत्रित हो जाता है, इसलिए तब वो कर्मों का परित्याग कर सकता है। तो पहले से 9वें श्लोक तक ये बताया गया है योग की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं। उसके अंदर सबसेक्शन है जो हम जब डिस्कस करेंगे तो हम उनको देखेंगे श्लोक बाय श्लोक। उसके बाद अगले 10वें श्लोक से लेके 27वें श्लोक तक भगवान अष्टांग योग की पद्धति का डिस्क्रिप्शन करते हैं, किस प्रकार से अष्टांग योग किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर नियम होते हैं, किस स्थान पे किया जाता है और क्या उसकी पद्धति होती है। तो ये भगवान अष्टांग योग का बताते हैं। और उसके बाद फिर अगले 5 श्लोकों में भगवान बताते हैं अष्टांग योग का लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा को प्राप्त करना। और भगवान बताते हैं कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, ये 5 श्लोकों में बताते हैं। उसके बाद जब अर्जुन अष्टांग योग का पूरा डिस्क्रिप्शन सुनते हैं करीब 17-18 श्लोकों में, तो अर्जुन को समझ में आता है कि अष्टांग योग तो करना बहुत इम्प्रैक्टिकल है, बहुत मुश्किल है अष्टांग योग करना। तो अर्जुन अपनी इनएबिलिटी बताते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा अष्टांग योग। उसी समय एक श्लोक आता है जो अर्जुन का फेमस श्लोक है कि मैं हवा को नियंत्रित कर सकता हूँ, परंतु मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, और अगर मन को नियंत्रित नहीं करूँगा तो अष्टांग योग नहीं कर पाऊँगा। इस तरह से अर्जुन बोल के अष्टांग योग की पद्धति को रिजेक्ट कर देते हैं। और भगवान बोलते हैं हाँ, ये अभ्यास और वैराग्य से पॉसिबल है, परंतु जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो फिर अर्जुन अगले 37वें श्लोक से पूछते हैं कि ठीक है, अगर कोई अध्यात्म में आता है, योग में आता है और आगे जाके फेल हो जाता है, 100% योग को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होगा। इस प्रकार से अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि कोई अगर योग में आगे जाता है और आगे जाके फेल हो जाता है, पूरी तरह से पास नहीं हो पाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो उसका क्या होगा। तो अगले 8 श्लोकों में फिर भगवान बताते हैं कि ऐसे योगी जो कि अनसक्सेसफुल होते हैं उनका क्या डेस्टिनेशन होता है वो भगवान बताते हैं। और फिर लास्ट के दो श्लोक जो हैं 46 और 47, उसमें भगवान बताते हैं कौन सबसे बड़ा योगी है, सारे योगों में से सबसे बड़ा योगी कौन कहलाता है, वो भगवान दो श्लोकों में बताते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में महत्वपूर्ण अध्याय है ये, और समझना भी आसान है। पांचवा अध्याय थोड़ा कठिन था क्योंकि ज़्यादा फिलोसफी था, परंतु ये अध्याय उतना कठिन नहीं है समझने के लिए। ध्यान से अगर सुनेंगे तो समझ सकते हैं, अपनी पुस्तक में रेफर करिएगा जब भी मैं श्लोक बताता हूँ। तो अर्जुन पहला श्लोक में बता रहे हैं, भगवान एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं इसको। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। भगवान बोल रहे हैं अनाश्रितः कर्म फलम, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों के लिए अनाश्रित है, अनाश्रित मतलब अनासक्त है, कर्म फलों से आसक्त नहीं है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्म करता है कर्तव्य के आधार पे, उसकी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है उसके आधार पे वो कर्म करता है, उसी व्यक्ति को सन्यासी और उसी व्यक्ति को योगी बोला जाता है। दैट मीन्स सन्यासी का डेफिनेशन भगवान बता रहे हैं, जो कि अपने कर्म फलों को एज ए ड्यूटी करता है, अपने कर्मों को एज ए ड्यूटी करता है और कर्म फलों से आसक्त नहीं होता है। इसके लिए एक श्लोक भी हम भगवद गीता में आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्म फलों के प्रति अनासक्त रह के कर्म को ड्यूटी के जैसे जो करता है वो सन्यासी और योगी है। ऐसा व्यक्ति योगी नहीं है जो अग्नि भी नहीं जलाता है, वो कर्म नहीं करता है। अग्नि नहीं जलाता है इन द सेंस, पहले के समय में हर सन्यासी को हर व्यक्ति यज्ञ करता था, तो यज्ञ के लिए अग्नि की आवश्यकता होती थी और कर्म करता था। तो भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ना तो अग्नि जलाता है ना ना कर्म करता है, ये वो सन्यासी नहीं कहलाता है। और अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु कलयुग में सामान्य जनता के लिए अष्टांग योग को करना बहुत कठिन है। इस पूरे अध्याय में अष्टांग योग को बताया गया है, परंतु भगवान बल देते हैं यहाँ पे कि कर्म योग करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि संसार में ज़्यादातर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होते हैं, तो उनको अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए और अपनी सामग्री रक्षा करने के लिए कर्म करना होता है। तो उनके लिए कर्म योग करना ज़्यादा आसान होता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यक्तिगत तृप्ति के वो अगर कर्म योग करते हैं, कृष्ण भक्ति में कर्म करते हैं, तो कर्म के फलों का भोग करने का उद्देश्य नहीं होता है उनका। और कई बार सन्यासी सोचते हैं कि अभी उनको मुक्ति हो गई तो अभी उनको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं, ऐसा सोच के उनका पतन हो जाता है। वो स्वार्थी हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो अभी भगवान को प्राप्त कर लिया, मैं अभी भगवान बन गया। बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जब मैं सन्यास ले लूँगा तो मैं भगवान बन जाऊँगा, मायावादी सन्यासी इस तरह से सोचते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये उनके पतन का कारण बनता है। इसके बाद दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। जिसको सामान्यतः लोग संन्यास बोलते हैं उसी को योग बोला जाता है। योग मतलब मुझसे युक्त होना। तो संसार से संन्यास होना और मुझसे युक्त होना दोनों वास्तविकता में समान चीज़ है, क्योंकि अगर कोई भगवान से युक्त नहीं होता है तो उसका संन्यास वैलिड नहीं है, उसका संन्यास यूजलेस होता है। भगवान बताते हैं अगर कोई केवल संन्यास लेता है अपना ड्रेस को बदल के और मुझसे युक्त नहीं होता है तो उसको संन्यास का कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्ति का संन्यास अपने आप में यूजलेस संन्यास होता है। वास्तविक संन्यास का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो भगवान का दास होता है। अपनी स्थिति को जब वो पहचानता है तो फिर उस स्थिति के आधार पर वो कर्म करना प्रारंभ करता है। इसलिए जो जीवात्मा कृष्ण से युक्त होता है वो व्यक्ति सन्यासी भी कहलाता है और योगी भी कहलाता है, क्योंकि उसको अपने वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। इसी कारण से वो भौतिक वस्तुओं से डिटैच हो जाता है और कृष्ण भक्ति में कृष्ण से अटैच हो जाता है, और कृष्ण से अटैच होने के कारण उसका जो स्वार्थ का स्वभाव है वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए वो व्यक्ति जो सन्यासी है वो योगी भी कहलाता है। संन्यास मतलब भौतिक संसार के कर्मों का त्याग करना, योगी मतलब भगवान से कनेक्ट होकर भगवान से संबंधित कर्म को करना। अब भगवान डिवाइड कर रहे हैं योग की दो अवस्थाएं, जो हमने डिस्कस जो हमने मैंने पहले बताया अभी कुछ समय पहले, योग आरुरुक्षु और योग आरूढ़। आरुरुक्षु मतलब जिसने अभी योग को प्रारंभ किया है, और आरूढ़ मतलब जो योग में बहुत उच्च अवस्था में पहुंच चुका है। ये दो स्थिति हैं। तो भगवान बता रहे हैं जो योग की प्रारंभिक स्थिति में है उसको कर्म करना उसके लिए साधन है, उसको कर्म करना चाहिए, उसको कर्म नहीं रोकना चाहिए। अष्टांग योग के नौ साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति योग आरूढ़ हो जाता है, योग सिद्ध हो जाता है, तब उसके लिए भौतिक शास्त्रों का परित्याग करना साधन कहलाता है। तो योग की प्रारंभिक अवस्था में कर्म करना साधन होता है, योग की उच्च अवस्था में फिर भौतिक कर्मों को त्याग करना साधन कहलाता है। दैट मीन्स इवन अगर अष्टांग योग में भी हम आगे बढ़ते हैं तो अष्टांग योग कर्म योग से प्रारंभ होता है, उसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में कर्म योग होता है। और कर्म योग व्यक्ति करता है वो धीरे धीरे कर्म से डिटैच होकर जब वो ध्यान की स्थिति में पहुँचता है, जब उसका मन नियंत्रित हो जाता है, तब वो भौतिक कर्मों का परित्याग कर पाता है। तो इस प्रकार से ये सारे अलग 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 प्रकार के जो योग हैं ये एक सीढ़ी के हिस्से हैं और हर योग उस सीढ़ी का एक स्टेप के जैसा है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, कर्मकांड, फिर कर्मयोग के बाद ध्यान योग के बाद ज्ञान योग, इस तरह से कर्मकांड आता है, कर्मकांड के बाद सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, और कर्म के बाद ये ज्ञान योग आता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है वो अष्टांग योग में जाता है और फिर अष्टांग योग से भक्ति योग आता है। तो अष्टांग योग के नव साधक के लिए भी कर्म करना अनिवार्य होता है। जब वो एडवांस करता है तब वो भौतिक कर्मों का परित्याग करता है। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग सीढ़ी के प्रारंभ, मतलब ध्यान योग की अवस्था, ज्ञान योग की अवस्था में जो लोग हैं वो प्रारंभिक अवस्था में हैं। और ध्यान योग शब्द जो है उसी को अष्टांग योग भी बोला जाता है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है फिर ध्यान तक पहुंचता है। अष्टांग योग में धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतिम स्टेप होते हैं, इसलिए कई बार अष्टांग योग को ध्यान योग बोला जाता है। तो ज्ञान योग, व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करता है उसके बाद अष्टांग योग करता है या ध्यान योग में आता है। तो ज्ञान योग में जो है वो व्यक्ति शुरू की अवस्था में है और अंतिम अवस्था में योग आरूढ़ कहलाता है। तो अंतिम अवस्था में भौतिक कर्म नहीं करता है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में उसको कर्म योग को पालन करना पड़ता है। कृष्ण भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो प्रारंभ से ही ध्यान में स्थित होता है, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है। जब वो भगवान का नाम लेता है तो उससे कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में हमेशा जो व्यक्ति व्यस्त रहता है वो ऑलरेडी योग की उच्च अवस्था में माना जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, चौथा श्लोक ये है, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योग की उच्च अवस्था है जबकि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग कर दिया है और सकाम कर्म नहीं करता है, तब वो योग की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। अभी योग की इनिशियल अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, और योग की उच्च अवस्था में एक स्टेप है जिसके कारण व्यक्ति एडवांस करता है। वो स्टेप क्या है? मन को नियंत्रित करना। जब तक मन नियंत्रित नहीं होता है तब तक योग की उच्च अवस्थाओं में नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए पांचवें और छठवें और सातवें श्लोक में भगवान बताते हैं मन को नियंत्रित करने का इंपॉर्टेंस, तीन श्लोकों में, क्योंकि अगर जब कोई व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करता है तो योग की प्रारंभिक अवस्था से योग की ऊंची अवस्था में कभी नहीं पहुंचेगा, भले ही वो कितना भी प्रयास करे, परंतु मन को नियंत्रित करना ही उसका साधन है। इसलिए इन तीन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं, पांचवें श्लोक में भगवान बताते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधो आत्मैव विपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से मन का उद्धार, अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन मित्र है, सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक समान होते हैं। तो ये तीन श्लोकों में भगवान मन को नियंत्रित करने के बारे में बता रहे हैं कि अगर मन को नियंत्रित नहीं किया तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, और अगर मन को नियंत्रित किया तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। तो मन को हमें हमेशा नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, उसको उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए, नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, कृष्ण भक्ति में मन को नियंत्रित करने का बहुत आसान तरीका है। एक तो सात्विक आहार ग्रहण करना जिससे मन सत्वगुण में आता है, भगवान का नाम जप करना, भगवान की वाणी को सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना और भगवान की सेवा करना, फिजिकल सेवा करना। इतना करने से मन अपने आप सत्वगुण में आ जाता है, मन नियंत्रित होना चालू हो जाता है। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उनको खुद भी पता है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं कि कोई बहुत ऊंची अवस्था में पता चलता है। जब हम भगवान का नाम लेना चालू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा मन नियंत्रित होना चालू हो गया है। तो जिस व्यक्ति इस प्रकार से मन को नियंत्रित करता है और जिसने मन को जीत लिया है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, दैट मीन्स उसने परमात्मा को अचीव कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। वास्तविकता में मन जो है, सातवें अध्याय में आएगा, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत। मन जो है उसके कारण संसार में द्वंद्व होते हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं, जैसे सुख दुख, द्वंद्व का मतलब दो विपरीत परिस्थितियां, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सब मन के द्वारा होते हैं। जो व्यक्ति मन के स्तर पर होता है वो इन वस्तुओं से प्रभावित होता है। और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब सेम होता है। कई भक्तों को हम देखते हैं जो एडवांस भक्त होते हैं, उनको कोई गुस्सा करे, कोई उनको बहुत सम्मान करे या अपमान करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मन के स्तर से ऊपर आ चुके हैं, मन को नियंत्रित कर चुके हैं। उनको ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि मन हमें इस तरीके से रियलाइज कराता है कि मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो गया। और चूंकि हम मन से नियंत्रित होते हैं, अपने आप को शरीर जैसा समझते हैं, तो उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, फिर उसके लक्षण अगले दो श्लोकों में बताए गए हैं। जो व्यक्ति योग की उच्च अवस्था में है वो जितेंद्रिय कहलाता है, सभी वस्तुओं को समान देखता है। सम लोष्ट अस्म कांचन, कंकड़ को, पत्थर को और सोने को एक समान देखता है। और हितैषियों, मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो और भी उन्नत माना जाता है। जैसे युधिष्ठिर का नाम अजातशत्रु था, युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, जो भी युधिष्ठिर को देखता था युधिष्ठिर से खुश हो जाता था। युधिष्ठिर ने कभी किसी को शत्रु नहीं माना, परंतु दुर्योधन अपने आप को दुर्योधन युधिष्ठिर को अपना शत्रु मानता था। युधिष्ठिर दुर्योधन को शत्रु नहीं मानते थे, ये बात जानने योग्य है। युधिष्ठिर ने कभी भी दुर्योधन को शत्रु नहीं माना, युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अपना छोटा भाई जैसे ही माना, परंतु दुर्योधन के मन में युधिष्ठिर के लिए वैर भाव था। वो युधिष्ठिर को अपना शत्रु मानते थे। तो जो व्यक्ति योग की बहुत ऊंची अवस्था में है, वो फिर इन ड्योलिटी से बाहर आ जाते हैं, संसार में जो द्वंद्व होते हैं उनसे बाहर आ जाते हैं। इस तरह से पहला सेक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें योग की दो अवस्थाएं और मन को नियंत्रित करने के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। और प्रारंभिक अवस्था में कर्म करना इम्पोर्टेंट होता है, उच्च अवस्था में कर्म का त्याग करना चल जाता है। इसके बाद अगले 16-17 श्लोक जो हैं वो भगवान अष्टांग योग को डिटेल से बताने वाले हैं, कि जो अष्टांग योग करते हैं किस तरह से वो करते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। अष्टांग योगी को चाहिए कि वो अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और सावधानी के साथ मन को वश में करे। उसे सारी इच्छाओं और संग्रह भाव की इच्छा सारी आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ये पहले क्वालिफिकेशन है जो योग में रहना चाहता है, एकांत स्थान में रहे और सावधानी के साथ मन को वश में करे, अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए और जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उन सभी से मुक्त रहे। ये इसके पहले क्वालिफिकेशन है। इसमें हम देखें, एकांत स्थान में रहना भी हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हमारा मन इतना ज़्यादा अनियंत्रित है कि हम एकांत स्थान में रहते हैं तो हमारा मन हमें गलत कार्यों की तरफ लेके जाता है। इंग्लिश में कैरेक्टर का डेफिनेशन भी यही बोला जाता है, कैरेक्टर मीन्स व्हाट वी आर डूइंग व्हेन नोबडी इज अराउंड अस। हम क्या करते हैं जब हमारे चारों तरफ कोई नहीं होता है देखने वाला, तब हम क्या करते हैं वो हमारे चरित्र को डिफाइन करता है। तो एकांत स्थान में रहना अष्टांग योगी के लिए अच्छा है, परंतु भक्ति योग में भक्तों का संग ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और कलयुग में इस तरह से संकीर्तन भी माना जाता है कि संकीर्तन के साथ ही व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है। कृष्ण की अनुभूति तीन रूपों में होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो लोग ब्रह्म, निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त नहीं है, आंशिक रूप से कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित है। क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की किरण है और परमात्मा कृष्ण के विस्तार हैं। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म परमात्मा क्या है। तो ब्रह्म भगवान के शरीर की रोशनी है और परमात्मा भगवान का एक रूप है जो कि हृदय में निवास करता है। तो भक्त होता है वो दोनों, इन दोनों को जानता है, परंतु निर्विशेषवादी और ध्यान योगी जो हैं वो कृष्ण को इस तरह से नहीं जानते हैं, इसलिए उनको अपूर्ण कृष्ण भावना भावित बोला जाता है। और उसके आगे और क्वालिफिकेशंस हैं श्लोकों में। योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा आसन बिछा दे और उसे मृग छाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ना आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने का योगाभ्यास करे। ये दूसरा क्वालिफिकेशन है। एकांत स्थान में कुशा आसन पर बैठ के मृगशाला उसके ऊपर रखिए, मुलायम वस्त्र रखिए, आसन ना तो ऊंचा बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, और पवित्र जगह पे हो और उसमें बैठ के मन इंद्रियों कर्मों को नियंत्रित करिए। अपने आप में बहुत कठिन है क्योंकि आजकल एकांत स्थान ढूंढना बहुत मुश्किल है। कहीं भी एकांत स्थान में आप बैठिए, कुछ समय बाद वहां पे सिटी बनना चालू हो जाता है। आप जंगल में जाएंगे तपस्या करने के लिए, कुछ साल बाद देखेंगे कि वहां पे गांव बसना चालू हो गया। और जो क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है, कुशा आसन, मृगशाला, और ना तो ऊंचा आसन हो नीचा आसन हो, आगे भगवान बताएंगे कि उसका ध्यान भी अपनी नाक के आगे हिस्से में ध्यान करना चाहिए। तो उसके लिए आंखें आधी आधी बंद रहती हैं, आधी खुली रहती हैं। ये अवस्था भी बहुत कठिन है। कलयुग के लोग जैसे ही आंखों को आधा बंद करते हैं तो उनको नींद आ जाती है। तो अगर वो अष्टांग योग करने के लिए जाएंगे तो सोते सोते समय निकाल देंगे। प्रभुपाद जी इसलिए हंसते भी थे कि अगर कोई व्यक्ति सवासन करता था तो प्रभुपाद बोलते थे वो सवासन करते करते सव जैसा हो गया, सो जाते थे। तो जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ लोग उसको कर सकते हैं परंतु कलयुग में सभी लोग उसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पवित्र स्थान का मतलब है तीर्थ स्थान। भारत में योगी अथवा भक्त अपना घर त्याग के प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश या हरिद्वार जैसे स्थानों में जाते हैं और एकांत में योग अभ्यास करते हैं। यहाँ पे यमुना, गंगा जैसी नदियाँ बहती हैं। पर ऐसा करना सबके लिए, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों के लोगों के लिए या सिटी में रहने वाले लोगों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों में जो योग की कमेटी होती है वो बताती हैं कि योग करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े योग आचार्य हैं अभी जो योग को सिखाते हैं, परंतु इस क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करते। बोलते हैं सिटी में आप योग करिए वो सफल रहेंगे। वो वास्तविकता में योग के साइड इफेक्ट का काम करते हैं। योग करने से जो बीमारियां दूर होती हैं वो उसके लिए योग करते हैं, परंतु जो वास्तविक अष्टांग योग किया जाता है वो कभी भी सिटी में नहीं किया जाता है। उसके लिए आपको एकांत स्थान में जाके करना होता है। मुंबई में बैठ के अष्टांग योग करना पॉसिबल नहीं है। आप कुछ आसन प्राणायाम कर सकते हैं, परंतु योग का जो अंतिम लक्ष्य है ध्यान और समाधि, वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भगवद गीता के इस प्रोसीजर को पालन करना होता है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता है। कलयुग में बृहन नारदीय पुराण बताता है, कलयुग में जब लोग अल्पजीवी हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत धीमे हैं, चिंताओं में भरे हुए हैं, तो उनको भगवान का नाम का जप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बिना उनका कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद और क्वालिफिकेशन बताए जा रहे हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। ये बहुत कठिन है। शरीर, गर्दन और सिर को ऊंचा सीधा रखना है और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाना है। इस प्रकार से अविचलित मन से भय रहित होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे परम लक्ष्य बनाए। और इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अगर कोई लगातार जिंदगी भर शरीर मन को नियंत्रित करके करता है तो वो अष्टांग योग में सफल हो सकता है, जो कि सामान्य जन के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे तो बहुत कठिन बोल सकते हैं। बहुत कठिन है ये सामान्य जनों के लिए। और अभी उस योगी को क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भगवान बता रहे हैं कि वो योगी ज़्यादा नहीं खा सकता है, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है, जो पर्याप्त नहीं सोता है, वो योगी नहीं बन सकता। ये भी कलयुग में बहुत कठिन है। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम इतना खा लेते हैं कि हमें लूज मोशन हो जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनस्नतः। जो हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या कम खाता है, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है, जो पर्याप्त नहीं सोता, वो योगी नहीं बन सकता है। भोजन और नींद के बारे में भी भगवान बता रहे हैं। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने की के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मांसाहार की आवश्यकता नहीं है पर मनुष्य को, क्योंकि उसको अन्न, शाक, फल और दूध उपलब्ध हैं। ऐसे भोजन करने वाले लोग सत्वगुणी लोग माने जाते हैं। मांसाहार तमोगुणी लोगों के लिए है। जो मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वो पाप को कमाते हैं। और जो भगवान को भोग लगा के उसका उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं, वो वास्तविकता में प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और आगे क्वालिफिकेशन भगवान बता रहे हैं, जो खाने पीने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास के द्वारा भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ये महत्वपूर्ण श्लोक है याद करने के लिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अभी ऐसी सेक्शन में है जब भगवान अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन डिटेल में बता रहे हैं। तो युक्त आहार विहारस्य, व्यक्ति को खाना नियमित होना चाहिए, सोना नियमित होना चाहिए, एंटरटेनमेंट आमोद प्रमोद नियमित होना चाहिए और कर्म, उसके जो सामान्य कर्म है वो भी नियमित होना चाहिए। अगर कोई इस तरह से नियमित रखता है तो भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जहाँ तक सोने का सवाल है तो 6 घंटे का उपाय जी बताते हैं कि शरीर चूँकि मशीन के जैसा है इसलिए शरीर के लिए सोने की आवश्यकता है, इसलिए 6 घंटे सोया जा सकता है। युक्त आहार, आहार के लिए भगवान को साग फूल फल अन्न दूध ये सब भोग लगा के, इनसे बनी वस्तुएं भोग लगा के स्वयं खाइए तो आहार होता है। आमोद प्रमोद मतलब भगवान का कीर्तन करना और कल्चरल वैदिक कल्चरल सिद्धांतों का पालन करना, और अव्यर्थ कालत्व मतलब अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। भक्तों को ये अनुमति नहीं होता है कि वो गप करें या न्यूज़ चैनल खोल के लगातार न्यूज़ को देखते रहें, ये सब भक्तों के लिए करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके बाद बता रहे हैं, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, योगाभ्यास मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ये सब करके कार्यकलापों को वश में करता है, अध्यात्म में स्थित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर बोला जाता है। तो हालांकि भगवान यहाँ पे श्लोकों में ध्यान योग बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, परंतु प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं कि किस प्रकार से ये अष्टांग योग की जो पद्धति है भक्ति योग उससे आसान है और बहुत आसानी से भक्ति योग में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे इस श्लोक में आप देखेंगे तात्पर्य में, तो अनुवाद में लिखा हुआ है कि मानसिक कार्यकलापों को वश में करना, कैसे करना है वो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। अगर किसी को अपने मन को नियंत्रित करना है तो मन इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सभी को कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। मन को कृष्ण के चरणों के बारे में सोचने में लगा सकते हैं, वाचाम से मतलब वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन करने में लगा सकते हैं, करव हरे मंदिर माजुनाद से अपने हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई करने में, श्रुति चकारा च्युत सत कथोदय सुनने की जो क्रिया है उसको अच्युत की कथा सुनने में लगाना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनने में लगाना चाहिए, मुकुंद लिंगालय दर्शने अपनी आंखों को भगवान के विग्रह के दर्शन करने में लगाना चाहिए, तद्भृत गात्र स्पर्शेंग संगमम अपने टच स्पर्श के इंद्रियों को भक्तों के चरणों को स्पर्श करने में, भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में लगाना चाहिए, घ्राणम चतत पाद सरोज सौरभे जो सूंघने की इंद्रियां हैं उसको भगवान के चरणों में जो फूल अर्पित हैं या तुलसी अर्पित है उसको सूंघने में लगाना चाहिए, पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे अपने पैरों को चलने की जो शक्ति है उसको अपने घर से भगवान के मंदिर तक ले जाने के लिए उपयोग करना चाहिए, तीर्थ स्थान में भगवान के धाम में जाने के लिए उपयोग करना चाहिए, सिरो ऋषिकेश पदाभिबंधने अपने सिर को भगवान के चरणों में झुकाने के लिए उपयोग करना चाहिए, कामम च दास्य न तो काम कामया जो भी कार्य करने की इच्छा है वो भगवान को अपना मालिक समझ के अपने आप को भगवान का दास समझ के कार्य करना चाहिए, भगवान ने जो बताया है यथ उत्तम श्लोक जनाश्रयारति भगवान ने जो बताया है और भगवान के भक्तों ने जो बताया है उस तरीके से कार्य करना चाहिए, इस तरह से हमारा मन और सारी की सारी इंद्रियां भगवान में लग जाती हैं। तो भक्ति योग बहुत आसान है सामान्य अष्टांग योग की तुलना में। आगे भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार वायु के रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर होता है। ये उच्च योगी की स्थिति है और इसी को कंटिन्यू करते हुए भगवान समाधि की अवस्था को बताते हैं। इस समाधि में व्यक्ति अपनी दिव्य इंद्रियों के द्वारा दिव्य सुख को प्राप्त करता है। इस सुख को प्राप्त करने के बाद उसको संसार में भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी आएं तो भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है क्योंकि उसको दिव्य सुख प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति संकल्प के साथ सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांश त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समंततः। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ऐसे योगी को निश्चय के साथ, निश्चय मतलब संकल्प और श्रद्धा के साथ योग के अभ्यास में लगे रहना चाहिए। जब हम भक्ति में भी लगते हैं तो बहुत जल्दी हमें अधीर नहीं होना चाहिए कि मुझे तो 2-4 महीने हो गए 16 माला करते हुए, अभी मुझे कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिला। कुछ लोग पूछते भी हैं कि प्रभु जी 6 महीना तो हो गए, अभी तक कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे। उनसे पूछना चाहिए 6 महीने से तो आप 16 माला कर रहे हैं, परंतु 6 लाख जन्मों से तो पाप किए हैं, तो वो सब पाप कहाँ जाएंगे। तो हमारा हमारा जो पाप का बैकग्राउंड है वो बहुत पुराना है, इसलिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए। संकल्प और श्रद्धा के साथ योग के अभ्यास में लगे रहना चाहिए और उस रास्ते से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर भक्ति के रास्ते में लगे रहेंगे तो जैसे पेड़ में लगा हुआ फल धीरे धीरे पक जाता है डाल में लगे हुए रहने से, उसी तरह से अगर भक्ति हम श्रद्धा और संकल्प के साथ करते रहेंगे और विचलित होकर यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, तो कृष्ण प्रेम जो है वो हमें आज नहीं तो कल प्राप्त होगा। और ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण प्रेम ही होगा, क्योंकि रास्ते में जब हम एडवांस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भक्ति रास्ते में हमें अच्छा लग रहा है, और आगे बढ़ने से हमें पता चलेगा लैंडस्केप। जैसे यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं तो जब हम देखते हैं कि डाकोर आया, भाले जाया, फिर नडियाड आया, तो हमें देख के पता चलता है कि हाँ अहमदाबाद भी आएगा, क्योंकि बीच के सारे रास्ते आ रहे हैं। तो इनको लैंडमार्क बोला जाता है। लैंडमार्क को देख के पता चल सकता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। इसी तरह से जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो उसके लैंडमार्क से देख से हमें पता चल सकता है कि हम भक्ति में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। ये लैंडमार्क श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक पुस्तक में लिखे हैं, उस पुस्तक का नाम है माधुर्य कादम्बिनी। उस पुस्तक में उन्होंने लैंडमार्क्स के बारे में बताया है। तो हमें संकल्प और श्रद्धा के साथ भक्ति में लगे रहना चाहिए, और मन से जो इच्छाएं आ रही हैं, मन से जो पैदा हो रही हैं, उन इच्छाओं को त्याग के इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करना चाहिए। जहाँ जहाँ मन भागता है, 26वां श्लोक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मन भागता है चंचलता और अस्थिरता के कारण, वहाँ वहाँ से उसको खींच के लाके अपने वश में रखना चाहिए। जो इस प्रकार से करता है उसको गोस्वामी कहा जाता है। तो इस चैप्टर तक, मतलब इस श्लोक तक योग पद्धति को भगवान ने डिटेल में बताया। अगले 5 श्लोकों में 28 से लेकर 32 तक भगवान बताते हैं कि योग पद्धति का वास्तविक लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि मैं ही परमात्मा हूँ। जब योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है तो भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में सुख प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति का क्या लक्षण होता है जो कि योग की उच्च अवस्था में होता है? वो सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। सर्वभूतस्थम आत्मानम, हर जीवों में मुझ मेरा दर्शन करता है। सर्वभूतानि चात्मनि, और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। कैसे ऐसा हो सकता है? सब जीवों में भगवान का दर्शन करना मतलब हर जीव को के हृदय में परमात्मा को वो देख सकता है, और मुझे सभी जीवों में देखना मतलब भगवान को जब वो देखता है तो उसी स्वरूप को सभी जीवों के हृदय में देखता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो ये सोचता है कि सभी जीव भगवान है, नहीं, सभी जीवों के अंदर भगवान उपस्थित है परमात्मा के रूप में। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि सभी जीव भगवान बन गए हैं, क्योंकि वो अपराध का कॉन्सेप्ट है। तो जो कृष्ण भक्त, जो भी योगी होता है, वो ये देखता है कि परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में स्थित है। परमात्मा रूप में भगवान कुत्ते तथा ब्राह्मण के हृदय में है। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान दिव्य हैं और कुत्ते और ब्राह्मण में स्थित होने पर भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। इसके बाद ये 30 श्लोक जो है, 30वां श्लोक, ये याद करने के लिए अच्छा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, और वो भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। दैट मीन्स मैं भी हमेशा उसको याद करता हूँ, वो भी मुझे हमेशा याद करता है। इस तरह से भगवान बता रहे हैं। सबसे पहले परमात्मा का बताया 29 श्लोक में, फिर उसके बाद 30वें श्लोक में स्वयं का बता रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान स्वयं परमात्मा है, क्योंकि भगवान बता रहे हैं जो हर जगह मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, तो उसके लिए मैं भी कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, वो भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। ये योग की बहुत उच्च अवस्था होती है। और फिर अगले 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे और परमात्मा को समान जानते हुए भक्ति करता है, वो हमेशा मुझ में स्थित होता है और सभी प्राणियों को वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सर्वभूतस्थितम यो मम भजत्येकत्वम अस्थितः। ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि हर जीव में मैं स्थित हूँ, और फिर इस तरह से जानते हुए जो मेरी भक्ति करता है, वो हमेशा मुझ में स्थिर रहता है। तो अर्जुन ने जब ये डिटेल डिस्क्रिप्शन सुना कि अष्टांग योग करने के लिए इतना इतना सारा कार्य करना होगा, अकेले जगह पर जाके नाक के अग्र भाग में स्थिर रह के और ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा सोना नहीं, तो अर्जुन को थोड़ा डाउट हुआ कि शायद मैं अष्टांग योग नहीं कर पाऊँगा। और अर्जुन ने वो डाउट भगवान को बताया कि आपने अभी अभी जिस योग पद्धति का वर्णन किया है मेरे लिए तो इम्प्रैक्टिकल लगता है। एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वास्थितम स्थिराम, मैं इस योग पद्धति को नहीं कर पाऊंगा जो आपने मुझे बताया, क्योंकि ये अव्यवहारिक मतलब इम्प्रैक्टिकल है, असहनीय मतलब इनटॉलरेबल है, ये करना मेरे लिए बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचौ देशे से लेके योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योग अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन और भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। तो व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। अर्जुन इस तरह से सोच रहे हैं 5,000 साल पहले, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी क्या हालत है। जो बोलते हैं मैं अष्टांग योग में पारंगत हो जाऊंगा, क्या वो हमें सोचना चाहिए क्या वो अर्जुन से भी ज़्यादा एडवांस है? ये पॉसिबल नहीं है। कलयुग के लोग, कलयुग के रिजेक्टेड माल जो है वो अर्जुन से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि अष्टांग योग मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल है। अर्जुन राजवंशी थे, उनमें अनेक सद्गुण थे, महान योद्धा थे, दीर्घायु थे और कृष्ण के मित्र थे। 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं, तो भी उसने अष्टांग योग की पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। इतिहास में कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है कि अर्जुन ने कभी अष्टांग योग किया हो। इसलिए जबकि द्वापर युग में ये पद्धति इतनी कठिन हो गई थी, तो हमें समझना चाहिए कि कलयुग में इस पद्धति को करना इम्पॉसिबल है। कलयुग में इस पद्धति को कोई नहीं कर सकता है। कुछ दुर्लभ लोग ऐसे हैं जिन जो इस पद्धति को करते हैं, परंतु सामान्य जनों के लिए ये इम्पॉसिबल वस्तु है। जो लोग विभिन्न स्कूलों और समितियों के द्वारा अष्टांग योग का अनुकरण करते हैं, उनको देखने में हो सकता संतोष लगे, परंतु वो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस पद्धति को पालन करके समाधि के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो अपना समय ही वेस्ट कर रहे हैं। अलम ही मनक कृष्ण, ये वाला याद करने का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक, मेमोराइजेशन श्लोक है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्या हम निग्रह मन्य वायो वेव सुदुष्करम। ये मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। अर्जुन बता रहे हैं कि मेरे अंदर शक्ति है, मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, परंतु मन को नियंत्रित, ये मन को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। मन इतना बलवान है कि बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। मन को सामान्यतः बुद्धि के अंडर माना जाता है, बुद्धि मन के ऊपर आती है, परंतु मन इतना शक्तिशाली है कि बुद्धि को भी ओवरपावर कर देता है। मन को वश में करना व्यक्ति को सबसे कठिन होता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप से कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, और ऐसा कर पाना वायु को वश में करने से भी कठिन है। तो ये जो इसके बाद एक श्लोक कोट किया गया है, इम्पोर्टेंट श्लोक है, कठोपनिषद में ये श्लोक है। इस श्लोक का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसकी लगाम है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। तो व्यक्ति रथ पर बैठा है, उस रथ में बुद्धि सारथी है, वो रथ जो है वो शरीर है, मन बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख और दुख का भोगता है। तो इसमें अगर लगाम सारथी के यहाँ से छूट जाए तो रथ जो है वो अनियंत्रित हो जाता है। इसी तरह से मन जब अनियंत्रित होता है तो पूरा शरीर, पूरा बुद्धि, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या बता सकते हैं? अगर अर्जुन को इतना कठिन था तो यहाँ झंझावात को रोक पाना कठिन है और उच्छृंखल मन को रोक पाना और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय, जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, कि समस्त दीनता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, विनम्रता के साथ अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो मन को वश में किया जा सकता है। और मन को अगर कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो फिर मन अलग अलग जगह पर नहीं भागता है, फिर वो सत्वगुण में आके भगवान कि सेवा में हमेशा के लिए तत्पर हो जाता है। तो जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, भगवान ने भी अप्रूव किया कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सही है, वास्तविकता में मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, परंतु दो चीज़ों के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है, अभ्यास एन तु कौनते वैराग्य एन चक रहते। अगर कोई प्रॉपर अभ्यास करता है और डिटैचमेंट रहता है, डिटैचमेंट रखता है कि मन बार बार भागेगा तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, डिटैच रह के फिर से प्रयास करना चाहिए। तो अगर किसी के पास ये दो वस्तुएं हैं, अभ्यास और वैराग्य, तब वो मन को नियंत्रित कर सकता है। कृष्ण भक्ति के आधुनिक समय में परमात्मा का ध्यान, तीर्थ में रहना, मन इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भक्ति के अभ्यास से मनुष्य नवधा भक्ति का आचरण करता है, कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, श्रवण करने से मन शुद्ध होने लगता है, जैसे जैसे मन शुद्ध होता है तो इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको कठिन किया जा सकता है, और अगर मन को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए जो योग पद्धति ऐसा सिखाते हैं, जो मॉडर्न बहुत सारे गुरु ऐसा सिखाते हैं कि आपको कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, आप 3-6 महीने में आइए मेरे पास डोनेशन दे के जाइए और बाकी आप जो पाप कर रहे हैं करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई गुरु इस तरह से सिखाते हैं, हमें समझना चाहिए कि उस गुरु का खुद भी मन नियंत्रित नहीं है और वो बोगस है, क्योंकि भगवान यहाँ बता रहे जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है, केवल नियंत्रित मन के द्वारा आत्म साक्षात्कार का प्रयास हो सकता है। तो इस तरीके से जब अर्जुन ने सुना कि मन को नियंत्रित करना इतना कठिन है, तो उनके मन में नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ठीक है, मन को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, योग को प्राप्त योग भी करने का प्रयास करेंगे, अध्यात्म में जाने का प्रयास करेंगे, परंतु अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे हम बोलते हैं दो नावों में पैर रखा तो एक भी नाव में नहीं मिले, दोनों नाव चली गई, व्यक्ति बीच में डूब गया। तो अर्जुन को ये डाउट हुआ, अगर मैं आध्यात्मिक योग की प्रैक्टिस करता हूँ और उसमें सफल नहीं होता हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं दोनों रास्ते से चला जाऊँगा, आध्यात्म भी नहीं मिलेगा, भौतिक भी नहीं मिलेगा। तो अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है और सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता है। जो चालू करता है अच्छे से श्रद्धा के साथ, परंतु भौतिक कंटेमिनेशन बोल सकते हैं, भौतिक विचारों के कारण विचलित हो जाता है और सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता है। तो अर्जुन ने यह प्रश्न किया डाउट, क्योंकि उनको लग रहा था कि अष्टांग योग और आध्यात्मिक पद्धति कठिन है, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा? फिर अर्जुन अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो दोनों जगह से चला जाएगा, आध्यात्म और भौतिक दोनों जगह से वो चला जाएगा, और जैसे बहुत बहुत सारे बादलों में से एक छोटा सा बादल अगर टूट के निकल जाए तो हवा के द्वारा वो बादल खो जाता है, फिर वो कभी भी मेन बादल में नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह से ऐसा तो नहीं होगा कि वो छिन्न भिन्न बादल के जैसा पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, उसको कोई सुख नहीं मिलेगा, किसी लोक में उसकी कोई जगह नहीं होगी। इस प्रकार से अर्जुन पूछ रहे हैं, उस योग को आगे करने के पहले अर्जुन इस तरह से पूछ रहे हैं कि अगर हम उसमें जाएंगे और उसमें पूरा नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। जैसे हिंदी में हम लोग हिंदी भाषा में एक वो है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, अगर कोई दो नाव पर पैर रखता है तो दोनों नाव जाने के बाद डूब जाता है। तो अर्जुन को उस तरीके से डाउट हो रहा है कि अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो ऐसा तो नहीं कि सब खत्म हो जाएगा? ये संशय मुझे दूर करिए, मेरा ये संशय दूर करिए, आपके अलावा इस संशय को कोई दूर नहीं कर सकता है। तो भगवान बताते हैं, जैसे अर्जुन बहुत घबरा जाते हैं ये प्रश्न करके कि क्या होगा, इसलिए भगवान तुरंत उनको कल्याणकारी शब्द बोलते हैं, भगवान उनको ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार के कल्याण कार्य में लगा होता है, आध्यात्मिक कार्य में लगा होता है, विनाशस्तस्य विद्यते, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। दैट मीन्स आध्यात्मिक कार्य में कोई व्यक्ति लगा है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जीरो हो जाएगा, उस व्यक्ति को लाभ होगा, भले ही वो पूरा नहीं कर पाए परंतु उसको लाभ मिलेगा। तो भगवान सबसे पहले श्लोक में यही बता रहे हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो व्यक्ति हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। कल्याण कार्य में जो योगी लगा है वो दोनों लोक में विजयी होता है, उसका कहीं भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। इस तरह से भगवान बता रहे हैं, नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में बताया है कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, इसमें ना तो कोई क्षति है ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते तब भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति करता है, पूरा नहीं भी कर पाया, तो भी कोई लॉस नहीं है। उस व्यक्ति की जो भगवत भक्ति है वो इंटैक्ट रहती है, और अगला जन्म जब वो लेता है तो उसके आगे से चालू करता है। भगवान ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं अभी कि जो अध्यात्म को प्रैक्टिस करते हैं परंतु पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनका क्या डेस्टिनेशन होता है, भगवान कुछ श्लोकों में बताएंगे। 45 श्लोक तक बताते हैं ये। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म लेते हैं या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। दो प्रकार से हैं। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य कर रहा है और शुरू में विचलित हो गया, मतलब मान लो 100% तक पहुंचना है और 20-30% तक ही पहुंच के विचलित हो गया, तो उसका क्या होता है, पवित्र आत्माओं के लोक मतलब स्वर्ग लोकों में कई कई सालों तक वो भोग करके फिर या तो सदाचारी ब्राह्मण कुल में या धनवान लोगों के घर में जन्म लेता है। ये उसका ये होता है। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, किंतु जो उतने आगे नहीं होते हैं, जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। जो भौतिकता के कारण पीछे छूट जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उनको फिर अगले जन्म में मौका दिया जाता है कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करें। उन्हें सदाचारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक में बहुत समय तक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करके भोग करते हैं, उसके बाद उनको कोई सदाचारी ब्राह्मण या धनवान घर में जन्म दिया जाता है, और ऐसे परिवारों में जन्म लेके इन सुविधाओं का उपयोग करके वो भक्ति में अध्यात्म में और आगे तक जा सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, 42वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अगर कोई ऐसा है जो कि अध्यात्म को बहुत आगे तक कर चुका है, 80% 90% तक कर चुका है, तो उसका क्या होता है, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद कोई असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म अति दुर्लभ है। जो अध्यात्म में बहुत आगे तक निकले उसके बाद असफल हो, थोड़ा सा छूट जाए, तो फिर वो योगियों के घर में जन्म लेता है, और उस जन्म को लेके वो तुरंत अपनी बुद्धि को प्राप्त करता है और फिर से अध्यात्म में आगे निकल जाता है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पिछले जन्म की चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। जैसे वो ऐसा जन्म लेता है तो पिछले जन्म की चेतना को और आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और फिर और उन्नति करके वो अपने इस जन्म में अपने जीवन को सफल कर लेता है जो कि पिछले जन्म में वो छूट गया था। तो दो प्रकार से लोग डेविएट होते हैं। जो शुरू में डेविएट होते हैं योग की प्रारंभिक अवस्था 10-20-30% तक, वो बहुत समय तक ऊंचे लोकों में भौतिक सुख प्राप्त करके उसके बाद सदाचारी घर में या धनवान घर में जन्म लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत आगे तक जाने के बाद डेविएट हुआ है 80-90-95% तक, तो वो तुरंत योगी के घर में जन्म लेता है और फिर पुराना जो बचा हुआ है उसको तुरंत कंटिन्यू करता है। पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। कई बार हम देखते हैं इस्कॉन में छोटे बच्चों को, कई बार देखते हैं कुछ कुछ छोटे बच्चे नेचुरली भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, वो आरती जल्दी याद कर लेते हैं, चैंटिंग जल्दी कर लेते हैं। 3-4 साल के बच्चे हैं तब भी ऐसा लगता है कि वो भक्ति पिछले जन्म में किए हैं और इस जन्म में उसी भक्ति को कंटिन्यू कर रहे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं कि हमारे बाद में आते हैं परंतु बहुत आगे निकल जाते हैं, तो उनसे हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि हमसे आगे कैसे निकल गए। हमें सोचना चाहिए कि पिछले जन्म में इन्होंने बहुत भक्ति की है इसलिए ये लोग इतना तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है, और जब ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो आगे प्रगति का प्रयास करता है और कई जन्मों के पश्चात वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। इस तरह से 45 श्लोक तक बताते हैं। अभी अगले दो श्लोक जो हैं यहाँ से भक्ति योग की शुरुआत भगवान करते हैं, क्योंकि 46 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो योगी है वो तपस्वी से भी ऊपर है, योगी ज्ञानी से भी ऊपर है और कर्मी से भी ऊपर है, इसलिए हे अर्जुन तुम्हें योगी बनना चाहिए। भगवान योगी को सबसे ऊँचा बता रहे हैं। ये योग जो है अष्टांग योग जो है ये कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी तीनों से ऊपर है, परंतु इन सभी प्रकार के योग जो हैं, उन सभी प्रकार के योगों में कौन सा योग सबसे बड़ा है, ये भगवान अंतिम श्लोक में बता रहे हैं। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। सारे प्रकार के योगियों में से, जितने भी योगी संसार में पाए जाते हैं, समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मद्गते नान्तरात्मना, श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मतलब मेरा भक्त है, मुझे समर्पित है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मतलब भगवान की भक्ति के बारे में सोचता है, भगवान के नाम का जप करता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, भजन करना मतलब सेवा करना। दो अलग अलग शब्द होते हैं, भजन और पूजन। पूजन का मतलब सेवा करना नहीं होता है, पूजन का मतलब होता है पूजा करना या सम्मान करना, ये पूजा का मतलब होता है, जबकि भजन का मतलब होता है सेवा करना। तो भगवान का भजन किया जाता है, भज धातु से भक्ति आता है, प्रेम या श्रद्धा पूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले को पूरी तरह से भर्त्सना की जाती है, क्योंकि सभी जीव भगवान का अंश हैं, इसलिए हर जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसा ना करने से वह जीव नीचे गिर जाता है। तो भजंती शब्द का मतलब होता है भगवान की भक्ति करना और प्रेममयी सेवा करना। तो इस श्लोक में भगवान क्लियरली बताते हैं कि सारे प्रकार के योगियों में ऐसा योगी सबसे अच्छा है जो कि हमेशा मेरे लिए समर्पित है, मेरे ऊपर श्रद्धावान है और मेरे बारे में सोचता है और मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, समय युक्त तमो मतः, मेरे ओपिनियन में वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ भगवान अपना ओपिनियन बता रहे हैं, और दुनिया में भगवान के ओपिनियन से अच्छा ओपिनियन और कौन सा हो सकता है, क्योंकि भगवान ने संसार बनाया है। तो भगवान जब ऐसा बोलते हैं कि मेरे ओपिनियन में वो योगी सबसे अच्छा है, दैट मीन्स वो योगी वास्तव में सबसे अच्छा है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान एग्जैक्टली प्रूफ करते हैं कि जितने भी योग पद्धति हैं उन सभी योग पद्धतियों में भक्ति योग उन सभी का राजा है, भक्ति योग से बड़ा योग कोई भी नहीं है। और ये अध्याय यहाँ पे भगवान ख़त्म होता है, और इसके साथ भगवान अगले 6 अध्याय की नींव स्थापित करते हैं, क्योंकि अगले सारे के सारे 6 अध्याय जो हैं वो भक्ति से संबंधित हैं, भक्ति योग सेक्शन में आते हैं। तो 7 से लेकर 12 तक भगवान जो भक्ति का सिद्धांत यहाँ पे बता रहे हैं उसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे भगवान यहाँ पे एंड करते हैं। तो हम जस्ट थोड़ा सा रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था योग की प्रारंभिक अवस्था और योग की उच्च अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में हमने देखा था, लिखा था कि कर्म करना उसका साधन माना जाता है, और जब व्यक्ति कर्म करके शुद्ध होता है और योग की उच्च अवस्था में जाता है तो वो फिर भौतिक कर्मों का त्याग कर सकता है। शुरू का 1 सेक्शन में ये बताया था, उसी सेक्शन में भगवान ने ये भी बताया था कि अगर कोई मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो योग की ऊंची अवस्थाओं में नहीं पहुंच पाएगा। 3 श्लोकों में हमने देखा था मन को नियंत्रित करना कितना आवश्यक है। उसके बाद अगले 17 श्लोक मतलब 10 से लेकर 27 तक भगवान ने अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन बताया कि कैसे व्यक्ति को एकांत जगह पर जाके कुशा आसन बिछा के मृग छाल उसके ऊपर डाल के नरम वस्त्र से ढकना, आसन ज़्यादा ऊंचा ज़्यादा नीचा नहीं हो, भौतिक भोग की इच्छा नहीं हो, उसका दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं भगवान ने बताई। और उसके बाद अगले 5 श्लोकों में 28 से लेकर 32 तक भगवान बताते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं और ध्यान योग के जो लक्ष्य हैं वो भगवान कृष्ण स्वयं ही हैं परमात्मा के रूप में। और अर्जुन फिर उसके बाद डाउट करते हैं, पूछते हैं कि मैं तो आपने जो डिस्क्रिप्शन बताया ये तो बहुत कठिन है, मैं वायु को संभाल सकता हूँ परंतु मेरा मन इतना ज़्यादा चंचल है कि उसको नहीं संभाल सकता हूँ। तो भगवान बताते हैं हाँ, मन को संभालना बहुत कठिन है परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है, और अगर मन को संभाल नहीं पाए तो आत्म साक्षात्कार पॉसिबल नहीं होता है। तो अर्जुन फिर अपना डाउट रखते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार में आगे जाते हैं श्रद्धा के द्वारा परंतु पूरा नहीं कर पाते हैं, किसी तरीके से पतित हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है। तो उस जगह पे भगवान अर्जुन को कंसोल करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं कि जो भी कल्याण के कार्यों में लगा है उसको कभी भी दुर्गति नहीं होता है, इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होगा कभी भी कि पतन होगा। फिर भगवान ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिनका पतन अलग अलग स्टेज में होता है, जो अध्यात्म की प्रारंभिक अवस्थाओं में डिविएट हो जाते हैं, भौतिक जो पतित हो जाते हैं वो बहुत जन्मों तक भौतिक सुख प्राप्त करते हैं ऊँचे लोकों में, उसके बाद सदाचारी या धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं, और अगर कोई भक्ति में बहुत अध्यात्म में बहुत आगे जाके पतित होता है गिरता है तो वो योगी किसी दूर अगले जन्म में तुरंत किसी योगी के घर में जन्म लेके पहली वाली बुद्धि को प्राप्त करके, पहली चेतना प्राप्त करके वो नेचुरली आध्यात्मिक कार्यों में, भक्ति के कार्यों में इंटरेस्ट लेता है, और वो व्यक्ति फिर उससे प्रारंभ करके बहुत जल्दी वो अपने प्रयत्नों के द्वारा योग के द्वारा निष्ठा से आगे प्रगति करता है और सारे कल्मश से मुक्त होकर कई जन्मों के बाद फिर वो भगवान के परागति को प्राप्त करता है। उसके बाद अगले दो श्लोकों में भगवान ने बताया कैसे योगी, ज्ञानी, कर्मी और तपस्वी से ऊपर होता है, और लास्ट श्लोक में भगवान ने बताया कि सारे योगियों में जो मेरा भक्ति करते हैं वो योगी सबसे उच्च होते हैं। तो लास्ट श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, 47 नंबर का श्लोक, जो कि याद किया जा सकता है, मेमोराइजेशन श्लोकों में आता है। तो कल से हम भगवत ज्ञान पाठ डिस्कस करेंगे, भगवत ज्ञान अध्याय 7वां अध्याय, जो कि भक्ति का प्रारंभ है। 7वें अध्याय में भगवान भक्ति विषयक ज्ञान बताते हैं, अपने ऐश्वर्य की जानकारियाँ भगवान बताते हैं। वो हम कल शाम को 4 बजे प्रारंभ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर के लिए, और कल 7वां अध्याय पढ़ के आएंगे। तो 7वां अध्याय ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद 29 30 30 अध्याय 30 श्लोक हैं उसके अंदर। कल उसको पढ़ के आएंगे तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी 7 8 9 10 11 12 6 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय हैं, जो कि हम कल से प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।